ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान को हम सभी कहते हैं सर्वशक्तिवान, और बाबा हम बहनों को कहता है शिव शक्तियाँ। तो आज हम शिव शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। शिव शक्ति माना ही निर्भय। भक्ति मार्ग में शक्ति की देवी, धन की देवी, विद्या की देवी अलग अलग। शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा है, दुर्गा है ना? दुर्गा को शक्ति की देवी कहते हैं क्योंकि सबसे शक्तिशाली जानवर पर वो सवारी करती है, शेर पर। शेर को दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर माना जाता है। और शेर पर वो बैठी कैसे है? दोनों पांव एक तरफ करके, जैसे अपन संदली पे बैठते हैं दोनों पांव एक तरफ करके, ऐसे बैठी है वो। शेर पे कभी कोई ऐसे बैठता है क्या? तो ये शेर उसका आसन है। माना शेर जैसी शक्ति हमेशा उसके अंदर है ही, धारण की हुई है। दुर्गा को देखते ही साधारण आदमी में भी ताकत आ जाती है। उसका फेस, उसका वो सब कुछ ऐसा बनाया हुआ है। और दुर्गा किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? दुर्गा कौन थी अपने असली रूप में? मम्मा आप नहीं थे? क्योंकि दुर्गा एक तो नहीं थी ना, दुर्गा तो बहुत सारी थी। यादगार तो एक ही बनती है, लेकिन बहुत सारी दुर्गाएं थी। दुर्गा माना दुर्गुणों को जीतने वाली, यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली। दुर्गा की कहानी सप्त देवी सप्त सती नाम से हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, उसमें दुर्गा की कहानी आती है। जब इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ा, असुरों का चारों तरफ राज्य छा गया, तो देवलोक चिंतित हो उठा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इन असुरों को मारने की कोई विधि बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सारे देवता अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति एकत्रित करो और उस एकत्रित शक्ति से मैं एक शिव शक्ति का निर्माण कर दूंगा और वो शिव शक्ति असुरों का संहार करेगी। तो सारे देवी देवताओं ने अपनी थोड़ी थोड़ी लाइट दी और वो लाइट घनीभूत होकर के एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी आयु की बहन प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम दुर्गा है और मैंने तुमको प्रकट किया है एक उद्देश्य के लिए। उद्देश्य ये है कि असुर बहुत बढ़ गए हैं और तुम जाओ असुरों का संहार करो। तो दुर्गा ने अपने आठों हाथों में आठ शस्त्र लिए, कहानी में ऐसा दिखाते, और शस्त्र लेकर के वो मैदान में पहुंच गई। तो वहां हजारों लाखों की संख्या में असुर खड़े थे। तो असुरों ने आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी। एक ने कहा, देखो देखो कितनी सुंदर लड़की है। दूसरे ने कहा, अरे इसको बहला लो, फुसला लो, अपनी तरफ मिला लो, ये तो अकेली है। तीसरे ने कहा, इसमें क्या हिम्मत है, ये हमको मारेगी, एक तलवार बहुत है इसके लिए। ऐसे वो आपस में बात करने लगे। तो कुछ असुर ग्रुप बना करके आए और उसके सामने खड़े हो गए और उसके रूप की महिमा करने लगे, क्योंकि दुर्गा तो सुंदर बहुत थी ना, सुंदर बहुत है ना, देवियां तो सुंदर दिखाती हैं। उसके रूप की महिमा करने लगे। तुम तो कोमलांगी हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथ में ये हथियार शोभा नहीं देते, तुम खाओ पियो गहने पहनो मौज करो, इन हथियारों को फेंक दो, बताओ तुमको जीवन में क्या चाहिए, हम तुमको वही चीज़ ला करके देंगे, ऐशो आराम चाहिए, सुख चाहिए, है ना। ऐसे करके उसको बहलाने लगे। उन्होंने सोचा छोटी सी बालकी है, फुसल जाएगी। तो दुर्गा मुस्कुराती रही, उनकी बातें सुनती रही, और उसके बाद कहानी में ऐसा दिखाते हैं कि उसने केवल एक हुंकार भरी, और हुंकार भरने से एक लाख राक्षस वहीं मर गए, और उन राक्षसों में एक था रक्त बीज। उसकी खासियत ये थी कि उसके रक्त का कण जहाँ भी गिरता था वहाँ एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो इतने राक्षस मर तो गए, लेकिन उस रक्त बीज के खून के कतरों से और राक्षस पैदा हो गए। तो दुर्गा ने क्या किया, अपने सारे हाथों से हथियार चलाने शुरू कर दिए। युद्ध में एक तरफ अकेली दुर्गा और लाखों असुर, महिषासुर आया, रक्त बीज आया, और भी कई असुरों के नाम बताते हैं जो मुख्य मुख्य थे, लेकिन उस अकेली ने सबका संहार कर दिया। तो कहती हैं कलयुग का नाश ही नहीं हो रहा था, दुर्गा ने नाश किया, और उसके बाद देवताओं ने खूब फूल बरसाए, उसकी आरती उतारी, और उसको कहा तूने वो असंभव काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। ऐसे दुर्गा की कहानी दिखाती, और जो दुर्गा की महिमा है उसमें उसके लिए बड़े शब्द हैं, इतनी महिमा है उसकी, शब्द आते आ ही नहीं सकते, जबानी आप याद ही नहीं कर सकते। लाखों नाम दुर्गा को दे रखे हैं, सुंदर सुंदर नाम, कर्तव्यवाचक नाम, जैसे कहते हैं ना शिव की महिमा अपरम अपार, ऐसे ही दुर्गा की महिमा भी अपरम अपार है। उसमें आप पढ़ेंगे इतने बढ़िया नाम है, बहुत सुंदर सुंदर। तो वास्तव में ये कहानी कब की है आप विचार करो। देवताओं ने थोड़ी थोड़ी शक्ति दी, माना वो कोई सांसारिक मनुष्यों की तरह पैदा नहीं हुई थी। बाबा हम बच्चों को भी कहता है आपका ये जन्म कैसा जन्म है, अलौकिक जन्म है, योग बल का जन्म है, डायरेक्ट ईश्वर के मुख से जन्म हुआ है, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमको जन्म दिया, तो ये ब्रह्मा मुख ही हमारा जन्म स्थान है, कमल पुष्प समान पवित्र जन्म है, ऐसे बाबा बोलता है। फिर दुर्गा को कहा तुम इन असुरों का संहार करो, इनका कोई नहीं कर सका। देखो कलयुग तक कितने धर्म पिता आए सृष्टि पे, सबसे पहले इब्राहिम आया। जब इब्राहिम आया तो ये सृष्टि आठ कला थी, फिर बुद्ध आया 250 साल बाद, तब तक ये सृष्टि जरूर एक कला तो कम हुई होगी, सात कला रह गई। उसके लगभग 250 साल बाद क्राइस्ट आया, एक कला तो कम हुई होगी, छह कला रह गई। तो जितने महापुरुष आए सृष्टि की कलाएं घटी के बढ़ी, घटती गई। हाँ, उसके बाद मोहम्मद आया, शंकराचार्य आया, गुरु नानक आया, कलयुग के समझो बीच में, तब तक तो कितनी दो तीन कलाएं रही होंगी, और अब तो एक भी नहीं है। तो जब से पुरुष गुरु बने, ये सब पुरुष गुरु थे, इनमें एक भी महिला नहीं है, तो पुरुष गुरुओं ने क्या किया सृष्टि का, क्या किया इसको, बढ़िया बनाया क्या? वो आते गए और गिरती कला होती गई, और अब कोई पुरुष गुरु भी नहीं बचा जो सारी दुनिया को एक बना सके, है किसी में ताकत? तो शिव बाबा ने देखा, मनुष्यों ने भी देखा कि असुर बढ़ गए, पाप बढ़ गया, दुख बढ़ गया, और अब इसका समाधान कौन करे। तो लोगों ने शिव बाबा को पुकारा, और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, और ब्रह्मा बाबा ने फिर दुर्गाओं का निर्माण किया, क्योंकि रचयिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख से दुर्गाएं निर्मित हुई। पहली दुर्गा मम्मा, उसके बाद तो मम्मा की फॉलो करने वाली बहुत हो गई। तो ये संगम युगी पवित्र जीवन का वर्णन है। फिर उसको युद्ध के मैदान में भेज दिया। ब्रह्मा जी ने ये थोड़े कहा कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, जाओ युद्ध के मैदान में, जहाँ असुर। अब देखो, आपको भी यहाँ सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, किस लिए? इसलिए थोड़े कि ब्रह्मा जी के पास यहीं बैठ जाओ। फिर उसने दुर्गा रच के क्या करेगा वो? सीखो, पढ़ो और उसके बाद युद्ध के मैदान में जाओ, वहाँ असुर हैं। फिर वो असुर क्या करेंगे? छोटी छोटी बहनें जाती हैं ना सेवा में, या सेंटर पे भी होती हैं, तो लोग कहते हैं, बहन जी कोई उम्र है तुम्हारी ज्ञान में चलने की? अरे बहन जी, तूने कुछ नहीं पहना, कान भी सुने, नाक भी सुना, गला भी सुना, थोड़े दिन तो पहन लेती। बहन जी बता, तेरे को क्या चाहिए, क्या दुख है? मैं तेरे को जो मांगेगी वही लाके दूंगा। देख कितनी सुंदर है छोटी सी लड़की, ये क्यों आ गई ब्रह्मा कुमारियों में? तो जैसे वो असुर खड़े खड़े बात कर रहे थे ना, ऐसे यहाँ भी लोग बात करेंगे। और होगी कोई कच्ची तो फंस भी जाएगी, नहीं तो पक्की होगी तो दुर्गा की तरह हुकार मारेगी। दुर्गा ने क्या किया? उनकी बातें सुनती रही सुनती रही, फिर हुकार मारी तो सारे मर गए। तो वो पहले सुनती रहेगी सुनती रहेगी, फिर ज्ञान की ऐसी बात सुनाएगी कि वो भी धराशायी हो जाएंगे, वो भी बाबा के बन जाएंगे। उसके बाद देवताओं ने फूल बरसाए महिमा की। तो देखो, जब अपन जीत प्राप्त कर लेंगे तो देवता क्या, मनुष्य क्या, बाबा क्या, सब फूल बरसाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी का जीवन ही शक्ति का प्रतीक है। दुनिया में कोई भी ना भूतो ना भविष्यति, जितनी शक्ति ब्रह्मा कुमारियों में है। मैं कई बार सेंटरों पे जाती हूँ ना, तो क्लास में भाई बहन सवाल पूछते हैं कई बार, तो मैं कहती हूँ, देखो आप लोगों की छोटी, आप लोगों की नौजवान बच्चियां अपने घरों में हैं तो आपको डर लगता है, भाई मेरी बेटी घर में अकेली है, लगता है ना माता पिता को डर। लेकिन हमारी अकेली अकेली बहनें, भाई सेंटर पे दो बहनें रह रही हैं, कौन है उनके साथ? शहर पराया, लोग पराए, भाषा भी कई बार पराई होती है। पंजाब की बहन उड़ीसा में चली गई, उड़ीसा की बहन पंजाब में आ गई, सेंटर है उस पर दो ही बहनें हैं। और हमारी बहनें कहती हैं, हमको बीच बाजार में आश्रम चाहिए, हैं? कोने में नहीं चाहिए, एकांत में नहीं चाहिए, जहां सबसे ज्यादा लोग आए ऐसी जगह आश्रम चाहिए। छोटी छोटी बहनें, और संडे भी छुट्टी नहीं है, हर रोज आश्रम खुला रहता है और खुला निमंत्रण है सबको, आओ भाई। लेकिन लोग डरते हैं हमारी बहनों से, कहते हैं, ना भाई ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में नहीं जाना, बाकी चाहे जहां मर्जी ले चल, क्लब में ले चल, सिनेमा में ले चल, कहीं ले चल, यहां नहीं जाऊंगा। तो तुम लोग हमारी 20-20 22-22 साल की बहनों से इतने डरते हो, तो बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? आप हो ना, सारा समाज आपसे डरता है, क्योंकि हमारे पास रूहानियत की ताकत है। हमने बोर्ड थोड़े लगा रखा है कि वो ना आए वो ना आए, 8 से 11 का टाइम है, कोई भी आए। और कई बार हम देखते हैं शराबी भी आ जाते हैं, रास्ते चलते आपका दरवाजा खुला, बहन जी डरती थोड़ी है, वो उसको ज्ञान सुनाती है, वो अगले दिन शराब ना छोड़ने का प्रण कर लेता। अब है किसी में इतनी ताकत? इसलिए आप संसार की सबसे अधिक ताकतवर सत्ता हैं, आपसे अधिक बलशाली कोई नहीं है, आपके आगे सब झुकते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के आगे सब झुकते हैं। रूहानियत की ताकत है ना, पवित्रता की ताकत है ना, ज्ञान सत्य ज्ञान की ताकत है ना, ऊंचे विचारों की ताकत है ना। देखो भले कोई लड़की आईएएस पढ़ जाए, आईएएस ऑफिसर बन गई, बड़ी ऊंची पढ़ाई है ना, बाबा में मुरली में याद करता है, अच्छा शादी करेगी, ससुराल में जाएगी। अब उसका जो ससुर है वो अनपढ़ आदमी है, सास है वो भी अनपढ़ है, गांव में रहते हैं, तो वो आईएएस पढ़ी हुई क्या करेगी, उनके भी पाँव में गिरेगी, उनके पाँव छुएगी। वो अनपढ़ आदमी है, भले क्रोधी हो, लोभी हो, अहंकारी हो, कैसा भी हो, माँ बाप तो कैसे भी हो सकते हैं, उनके भी पाँव छुएगी, है ना, झुकना पड़ा ना। अच्छा ब्रह्मा कुमारी भले 5 पढ़ी है, 10 पढ़ी है, 12 पढ़ी है, कैसी भी है, आईएएस ऑफिसर भी आएगा तो क्या करेगा, उसके पाँव छुएगा। अब बताओ किसकी पोस्ट बड़ी हुई, अब वो बेचारी आईएएस बन के भी झूठे बर्तन मांजेगी, बाद में खाएगी, है ना। और आप लोग बिना पढ़े भी क्या हुआ, आईएएस को भी ज्ञान सुनाते हो, हैं, वो भी आपको सलाम करेगा, मिनिस्टर हो वो भी आपको सलाम करेगा। तो बताओ कितनी बड़ी ताकत है आपके पास, इससे बड़ी ताकत किसके पास है, किसी के पास भी नहीं है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। तो विचार करो कितनी महान आत्माएं हैं आप। तो हमारे अंदर भय का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको इतना ऊंचा स्थान दिया है, संगम युग ऊंचे से ऊंचा, और उसमें हम बाबा के बच्चे ऊंचे से ऊंचे। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम चिंतन करते हैं तो भय पैदा हो जाता है, कुछ ऐसी बातें, अलग अलग बातें हैं, उनके ऊपर भी हम विचार करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी बात सुना दूं, क्योंकि बचपन में मैं भी डरपोक थी, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं डरती थी। मेरा डर कैसे निकला, मैं वो इसलिए आपको सुनाना चाहती हूँ कि अगर किसी में थोड़ा बहुत भय हो तो वो भी निकाल दे। मुझे डर लगता था 10, 11, 12 साल की आयु तक, उसके बाद नहीं। और डर लगता था अंधेरे से, लाइट चली गई, कमरे में अकेली हूँ तो डर लगेगा। भाई बहन भी करते थे, वो कमरे में अकेली का हाथ पकड़ के ले जाते थे, फिर लाइट बंद कर देते थे, है ना। तो मैंने एक बार एक किताब पढ़ी, उस समय तो ज्ञान में नहीं थे ना, किताब थी कोई देशभक्ति की, और उसमें एक भारत के देशभक्त आदमी को पाकिस्तान या चाइना वालों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने उसको बहुत मारा और कहा तुम अपने देश की जो भी खुफिया बातें हैं वो हमको बता दो। तो उसने नहीं बताई, फिर और मारा, फिर और मारा, तो वो बेचारा मार खा खा के बिल्कुल ही जैसे हिम्मतहीन हो गया। फिर उसने कहा अच्छा बताता हूँ, थोड़ा मुझे ढीला तो छोड़ो, बांध बूंद रखा था, तो उन्होंने थोड़ा ढीला किया, खुश हो गए, अब ये बताएगा। तो उसने कहा कि मैं बताऊं, तुम सारे के सारे उल्लू के पट्ठे हो। तो जब मैंने ये पढ़ा, फटी हुई किताब थी, आगे का पन्ना नहीं, पीछे का पन्ना नहीं, बीच की फटी हुई थी। तो अभी मैंने दूसरी तीसरी क्लास में हिंदी पढ़नी सीखी थी, तो ये जब मैंने पढ़ा ना तो मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने कहा देखो ये आदमी कितना बहादुर था, इतना इसको मारा और अकेला था, इसके साथ कोई भी नहीं था, और ये फिर भी नहीं डरा, और फिर भी उनको ही उल्टा बोल रहा है, कमाल है, इतनी भी ताकत होती है आदमी में, और देखो मैं कैसी हूँ, अंधेरे से डरती हूँ। तो मैंने क्या किया, अंधेरे कमरे में कई चक्कर लगाए, देखूं अंधेरे कमरे में मुझे कौन पकड़ेगा, देखूं तो सही, है ना, किसी ने नहीं पकड़ा, कौन पकड़ेगा, ना बिल्ली ना कुत्ता, है ना। तो फिर मैंने पक्का किया कि ये फालतू का भय है, लोग तो इतनी इतनी बड़ी मुसीबतों में नहीं डरते, और मैं अपने ही घर के अंधेरे कमरे में डर रही हूँ, भला ये भी कोई बात हुई? और उस दिन के बाद दोबारा मुझे भय नहीं लगा। उसके बाद तो ज्ञान, और उसके बाद तो बाबा की बातें सुनते हैं, लेकिन भय केवल एक ही प्रकार का नहीं है, अंधेरे कमरे का ही भय नहीं है, अंधेरे का ही भय नहीं है, भय मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के हैं। और वर्तमान संसार भय के बीच में जी रहा है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, जैसे कहीं कंपनी में कहीं, तो लोग एक ही सवाल पूछते हैं, बहन जी डर बहुत लगता है घर से निकलते, क्या करें? 24 घंटे डर बना रहता। आज की दुनिया असुरक्षित है ना, तो इसमें लोगों को डर बहुत लगता है। कोई घर का आदमी बाहर निकलता है तो पीछे वालों को डर लगता है। तो देखो डर कितनी प्रकार के हैं, गिनती कीजिए। सबसे बड़ा भय मनुष्य को लगता है मृत्यु का। लोग मरने से पहले ही डर डर के कई बार मर जाते हैं। एक बार कहते हैं भगवान ने मृत्यु को कहा, जाओ तुम मृत्यु लोक में और 500 लोगों को ले आओ। तो मृत्यु गई, और अगले दिन जब लौटी तो धर्मराज के दरबार में 1000 लोग पहुंच गए। तो धर्मराज ने मृत्यु को कहा कि मैंने तेरे को सिर्फ 500 लोग लाने के लिए कहा था, तू 1000 क्यों ले आई? उसने कहा, जी मैं तो 500 को ही लाई थी, बाकी 500 तो इनको आता देख करके डर के मारे मर गए, और वो आ गए पीछे पीछे। तो दूसरे की मौत का डर, अपनी मौत का डर, सोच सोच के आदमी कितना कितना डरता है, कितनी बार मरता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को रोज मरने की और रोज जीने की कला सिखाई है। मरना और जीना दोनों बाबा ने हमारे हाथ में दे दिए। क्यों भाई, क्या हम मरते नहीं हैं रोज? मृत्यु का मतलब क्या होता है? शरीर से आत्मा निकल जाए उसको मृत्यु कहते हैं, और आत्मा शरीर में रहे उसको जीवन कहते हैं। आपके हाथ में दोनों चीजें नहीं है क्या? आप जब चाहो शरीर में आ जाओ और जब चाहो शरीर से निकल जाओ। तो जीवन भी आपके हाथ में है, मृत्यु भी आपके हाथ में, भगवान ने मालिक बना दिया आपको। तो मालिकों को भला क्या भय? जैसे शिव बाबा जब चाहे ब्रह्मा के दादी के तन में आए, शिव बाबा जीवात्मा बन गया, 2-3 दिन पहले मुरली में बाबा ने बोला, और जब चाहे बाबा शरीर छोड़ के आत्मा बन जाए, जब चाहे जीवात्मा बन जाए। तो हम भी ऐसे ही हैं ना, फिर भला मृत्यु का भय क्यों? अच्छा, मृत्यु का भय उसको लगता है जिसने जीवन में कोई काम ना किया हो। जैसे पेपर से कौन सा बच्चा डरता है जिसने तैयारी ना की हो? हाय पेपर आ गया, हाय पेपर आ गया, अब क्या होगा? जिसकी तैयारी होगी वो कहेगा जी कल आता, आज आ जाए। तो मृत्यु से वो लोग डरते हैं जिन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। मर जाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऊपर जाके क्या होगा। लेकिन हम बाबा के बच्चों का तो श्वास श्वास अच्छे काम में जा रहा, हमारा तो जीवन सफल हो गया, भला हमें काहे का डर? हम जाएंगे तो भी भरपूर होके जाएंगे, रहेंगे तो भी भरपूर, सदाई भरपूर, इसलिए हमें काहे को डर? लोगों को इस बात का भी भय होता है, मेरे पीछे वालों का क्या होगा। अब हम बाबा के बच्चों को तो ये भी डर नहीं है। है किसी को डर? आप मुए मर गई दुनिया, ना कोई रोने वाला ना कोई रोने वाली, आए अकेले जाना अकेले, पाठ पक्का है। कोई मेरा प्यारा मित्र संबंधी ना चला जाए, ये डर लगता है। माँ ना चली जाए, बाप ना चला जाए, बीमार है, बुजुर्ग है, उसके लिए भी बाबा ने क्या कहा? दे सही दे के सब संबंधों को भूल, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जिसके जितने ज़्यादा संबंधी हैं वो संगम युग में उतना ही वो भाग्यहीन है, क्योंकि ज़्यादा में उलझेगा। और जिसका कोई है ही नहीं वो लक्की है, क्योंकि शिव बाबा में बुद्धि जल्दी लग जाएगी। देखो मम्मा की बुद्धि कितना जल्दी लग गई, परिवार था लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है ना, बहुत संबंधी हो खींचे और एक कहे कि भाई पहले से ही मन निवृत्त हो चुका है तो बाबा में लगाना, जितने कम संबंध होंगे उतना बाबा में लगाना सरल। इसलिए क्यों चिंता करें कोई ये ना हो जाए कोई वो ना हो जाए, उनको भी कहो आप भी बाबा को सहारा बनाओ। हमारी एक बाबा की बच्ची बहुत अच्छी थी, बाप उसका बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो किसी ने गोली मारी बाप को और वो सेंटर पे थी, होगी आपस की रंजिश या पूर्व जन्म का हिसाब होगा। तो बहन जी ने सोचा कि ये लड़की पता नहीं अब क्या करेगी, कितना दुखी होएगी, घर जाएगी रहेगी, पर लड़की बड़ी समझदार थी, आई दीदी के पास, कहती है दीदी अगर सच पूछो ना तो एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, मुझे थोड़ा सा घमंड था कि मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, क्योंकि बाप बहुत बड़ा अफसर था, अब सच पूछो तो मेरा वो घमंड भी खत्म हो गया, अब मुझे कोई अभिमान नहीं है, बस मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ। उसने कितना पॉजिटिव लिया, कितनी बड़ी ट्रेजडी हुई लेकिन पॉजिटिव ली। संगम युग में बाबा ही हमारा संसार है। दूसरा भय होता है मनुष्य को बीमारी का, ये मृत्यु से भी बड़ा भय है, क्योंकि मृत्यु में व्यक्ति को लगता है मैं एक बार में चला जाऊंगा, लेकिन बीमारी वो तो तड़फाएगी, और बहुत छोटी आयु में भी आजकल बीमार हो जाते हैं, समय ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, हेरिडिटरी इफेक्ट होते हैं, पूर्व जन्मों का हिसाब होता है। अब इस भय से बचने के लिए भी बाबा ने क्या कहा, देखो हमारी दादी निर्मल शांता की कहानी अगर आपने सुनी हो, दादी बाल्यकाल से दमे की पेशेंट थी, दमा तपेदिक सांस की बीमारी, और दादी की आयु बहुत छोटी थी, लेकिन दादी को बाबा पर दृढ़ निश्चय था, और कराची में जैसे बाबा ने 14 साल सब भाई बहनों को रखा ऐसे दादी को भी रखा, दादी ब्रह्मा बाबा की बेटी लेकिन उसके लिए कोई कंसेशन थोड़े था, अभी भी दादी है, आप सब मिलते होंगे, हो सकता है आपकी भट्टी में भी आए। तो एक बार देखो बाबा ने परीक्षा ली, बाबा ने कहा बच्ची को बर्फ के पानी से नहलाओ, संदेशी ऊपर गई और संदेशी के हाथ संदेश भेजा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहलाओ, तपेदिक का जो मरीज होता है ना उसको ठंडी से बड़ा परहेज होता है, ठंडी चीज नहीं खाता वो। तो दादी को मैसेज सुनाया, दादी ने कहा ठीक है बाबा ने कहा है तो मैं करूंगी, और वो बैठ गई बाथरूम में, और संदेशी ने बर्फ का पानी बाल्टी में बर्फ डाल करके उसके सिर पर ऐसे डालने का किया ना, तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, मना हाथ रोक दिया, दूसरी बहन डाल रही थी संदेशी ने पकड़ लिया या संदेशी के हाथ ही रुक गए। बाबा ने कहा बच्ची परीक्षा में पास हो गई और बाबा बच्ची को आयु का वरदान दे रहा है। तो देखो हमारी दादी निर्मल शांता आज भी हमें दर्शन देती हैं, हमारे सामने मौजूद है, ये किस बात का प्रतीक है, भले बीमारी है लेकिन शिव बाबा पर अटूट निश्चय है, मेरा सर्जन वही है, वही मुझे ठीक करेगा, मुझे उसी से दवाई खानी है, उसी की बात माननी है। इसी तरह से यज्ञ की एक पुरानी कहानी है बेगरी पार्ट की, बाबा ने बेगरी पार्ट में आबू में कहा बाजरे की रोटी और छाछ खाओ, तो जो तपेदिक के बीमार थे या जो भी बुखार वाले थे जो भी थे उन लोगों ने बाजरे की रोटी और छाछ खाई, ये बीमारों का खाना नहीं होता है, स्वस्थ आदमी भी नहीं खा सकता, तो जो बीमार थे वो ठीक हो गए, और जिनको डर लगा ना कि कहीं हम बीमार ना हो जाए, वो बीमार पड़ गए। निश्चय की बलिहारी, निश्चय होता है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। भगवान पे अटूट निश्चय चाहिए। अगर उसको मेरे शरीर से सेवा लेनी है तो वो मुझे ठीक रखेगा, मैं चिंता क्यों करूं। जब ये गाड़ी हमने मालिक को सौंप दी, परहेज करना मेरा फर्ज है, दिनचर्या को नियमित रखना मेरा फर्ज है, और भी कोई डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई वो करना मेरा फर्ज है, लेकिन चिंता करना मेरा काम नहीं है। बाबा की गाड़ी है, बाबा ठीक रखेगा। और भी कितने भाई बहन हैं जिन्होंने शिव बाबा पे निश्चय से अपनी बीमारी को खत्म कर दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए। हमारी हमने ये जो अभी आदि रतन बुक लिखी है इसमें हमारी दादी संतरी की कहानी है। दादी संतरी को पेट में बड़ी तकलीफ थी, कई दिन तक बेचारी सोई नहीं। कईयों ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, बॉम्बे जाओ, साकार में बाबा थे ना, तब की बात है, तो बाबा के पलंग पे बाबा सोते थे, बाजू में वो जो आपने देखी है ना गद्दी जमीन पर, वहाँ दादी संतरी सोती थी, बाबा की भतीजे की बहू थी, और वैसे फिर ज्ञान में आने के बाद समर्पित हो गई, बाबा की संभाल करती थी। तो उसने कहा मैं सर्जन के साथ रहती हूँ, सुप्रीम सर्जन के साथ, भला मैं किस सर्जन के पास जाऊँगी। तो एक दिन बाबा 2 बजे उठा, और ये तो बेचारी जागी रही थी, बाबा उठते ही थे 2 बजे। बाबा ने कहा बच्ची नींद नहीं आ रही है? कहा नहीं बाबा नींद नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ है, ऐसे सुनाया इसने। और बाबा बैठे 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 उसको स्काश देते रहे जो भी किया, और बाबा ने 4-5 बजे कहा बच्ची तू उठ के चल। वो उठ के चली बिल्कुल नॉर्मल। बाबा ने कहा बच्ची कैसी हालत है? कहा बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची कैसा महसूस हुआ? बाबा मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे अंदर कुछ काट कूट चल रही थी। बाबा ने अमृत वेले बच्ची का ऑपरेशन किया योग बल से। आप पढ़ना उस बुक में, अनबिलीवेबल नहीं है ये। ये जो हार्ट वाले हैं डॉक्टर गुप्ता जी के पास आते हैं, इनको भी ऐसा ही अनुभव होता है कि हमारे हार्ट का ऑपरेशन हो गया मेडिटेशन के दौरान, शिव बाबा ने ऑपरेशन कर दिया, तो इनको फिर ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो देखो भगवान क्या नहीं कर सकता। उसको सर्जन ऐसे ही थोड़ी कहा गया है, वो है। मीरा ने कहा दर्द के मारे बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। भले वो कैसा भी दर्द था, लेकिन मीरा कहती है मेरे को वैद सांवरिया ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारी सीतू दादी थी हापुड़ में, उसने शरीर छोड़ दिया, उसको बड़ी बीमारी थी, बॉम्बे गई, डॉक्टरों ने कहा तू ठीक नहीं हो सकती, बहुत कुछ कहा। एक दो बार गई, फिर कहा बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार जब बीमारी बहुत बढ़ी तो बाबा देखने गए, और ये दादा विश्व रतन, आपने नाम सुना होगा, नहीं तो उसमें पढ़ना आदि रतन में, बाबा साथ ले गए, वो इंजेक्शन लगाते थे। बाबा ने कहा बच्ची गाय का कच्चा दूध लेके आओ। तो एक पास में सरदार जी का घर था, वहाँ से कच्चा दूध लेके आए, गाय थी उसकी, कच्चा गाय का दूध इंजेक्शन में भरा और सीतू दादी को लगा दिया, और सीतू दादी ठीक हो गई। अब कोई ये ना समझे कि गाय के दूध का इंजेक्शन मैं भी लगा लूं तो ठीक हो जाऊं क्योंकि ये निश्चय की बलिहारी होती है। जब निश्चय होता है ना तो दूध भी दवाई का काम करता है, और निश्चय नहीं होता है तो दवाई भी पानी बन जाती है। तो अटूट निश्चय है हमारा कि ये तन बाबा का है, बाबा रक्षक है, बाबा इस तन से सेवा लेगा, और अगर बाबा ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो बीमारी सहित एक्सेप्ट किया है। कोई छोटी मोटी होती भी है तो बाबा ने ये थोड़े कहा कि बीमार हो जाओगी तो मेरी नहीं और बाकी टाइम मेरी। बाबा ने एक्सेप्ट किया तो फुल एक्सेप्टेंस है ना, तो फिर हम क्यों चिंता करें। इसलिए बाबा पर सब कुछ छोड़ करके अपने को निश्चिंत रहना है। थोड़े दिन पहले हमने एक मैगजीन में अनुभव डाला था, एक भाई का गुटखा खा के सब गाल वाल गल गया था, बहुत गरीब था, दवाई कर नहीं सकता था, तो मरने के लिए निकला, मरने के लिए निकला। फिर रास्ते में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, मन बदल गया, सोचा चलो मैं भी काम कर लेता हूँ, तो यहाँ पट्टा बांध के काम करने लगा, पट्टे को खून लग गया क्योंकि यहाँ सुराख हो गया था अंदर से, गुटखा खाते हैं ना यहाँ दबाते हैं फिर वो गाल गल जाती है। तो उसने काम से निकाल दिया, बोला यूपी में चला जा, वहाँ मैं, मेरा एक दोस्त था उसके पास काम लगा दूंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा। वो यूपी में गया, फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाने लगा, ज्ञान मिला, तो रोज़ बाबा को कहता था, बाबा अब मैं तेरी क्या सेवा करूँगा, गाल गली पड़ी है, कैंसर हो गया है, अब मैं तेरी क्या सेवा करूँगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, जी के भी क्या करूँगा। तो एक अमृत वेले बाबा ने उसको टचिंग दी, एक घास, बोला बच्चे बचपन में तू जिस घास को खेल खेल में पीसते थे ना, वो घास लगा लो यहाँ पे। उसने जी 4-5 बार लगाई, देखो कैंसर हो गया था और वो ठीक हो गया। उसने हमको दोनों फोटो भेजे, कैंसर वाला भी और ठीक होने वाला भी। हमने मैगजीन में डाला तो कई लोगों ने हमको लिखा कि उस घास का नाम हमको भी बता दो। तो हमने उनको उत्तर लिखा कि ये करामात घास की नहीं है, घास तो केवल बहाना था, लेकिन करामात उसकी लगन की है, क्योंकि उसको, उसने दिल से कहा बाबा को कि बाबा मेरे जीवन का क्या यूज, अगर मैं यूं ही रहा तो आप मुझे यूज करो, कहीं काम लगाओ, ज्ञान अब मिला है तो अब तो बचे हुए समय को काम में लगा लो। तो बाबा को सच्ची दिल से कहा तो वो घास तो बहाना बनी, बाकी सर्जन ने उसको ठीक कर दिया। तो सच्चे दिल की कमाल है, निश्चय की कमाल है, समर्पण की कमाल है, प्यार की कमाल है। फिर भय किसका होता है, इज्जत का बहुत बड़ा भय होता है व्यक्ति को, मेरा धर्म मेरी इज्जत, मेरा धर्म न चला जाए, मेरी इज्जत न चली जाए, हमारा धर्म कहो हमारी इज्जत कहो, प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी दौलत है, प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, प्योरिटी हमारा सबसे बड़ा गहना है, हमारी ताकत है पवित्रता। लेकिन इसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत युक्तियां सिखाई हैं। बाबा कहता है बच्चे कोई भी आसुरी दृष्टि वृत्ति वाला व्यक्ति आपको आंख उठा के भी नहीं देख सकता, आप तो असुर संघारिणी हैं, किसी में ताकत नहीं जो आपसे नजर मिलाए, उसकी उसकी दृष्टि तो क्या है, टिकती नहीं है, स्थिर ही नहीं है। और हम बाबा के बच्चों की दृष्टि में तो पवित्रता का बल है, वो देखता है ऐसी शक्तिशाली दृष्टि, अपने आप ही नजरें झुका लेता है। कोई भी व्यक्ति हो, क्रोध से देखे, लोभ से देखे, स्वार्थ से देखे, किसी भी बुराई से वशी ईर्ष्या से देखे, तो बाबा ने हमको युक्ति बता रखी है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, और वास्तव में दुर्गा के जो 8 हथियार दिखाए हैं ना, कोई भी व्यक्ति युद्ध में एक साथ 8 हथियार नहीं चला सकता, हर व्यक्ति एक ही हथियार में पारंगत होता है। वो तो यादगार दिखाया ना, देखो अर्जुन का बाण फेमस है, भीम का भाला फेमस है, गुरु गोविंद सिंह की खड़ग और उसकी शिवाजी की खड़ग फेमस है, और हनुमान की गदा फेमस है, पृथ्वीराज चौहान का भाला फेमस है। तो देखो, और फिर इन जिन जिन लोगों ने ये हथियार चलाने सिखाए, उन्होंने किसी गुरु से शिक्षा भी ली। भाई अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा, भीम ने कृष्ण का भाई कौन था वो, बलराम, उससे सीखा, शिवाजी का भी कोई गुरु था, पृथ्वीराज का भी कोई ना कोई रहा होगा सिखाने वाला। अब दुर्गा ने भला किससे सीखा धनुष चलाना, और एक बार में सारे हथियार चल सकते हैं क्या? तो ये वास्तव में प्रैक्टिकल बात नहीं है, व्यवहारिक बात नहीं है, ये यादगार की बात है। प्रैक्टिकल में अब हमारे पास अष्ट शक्तियाँ हैं, हमारे पास पवित्रता की शक्ति है, रहम दिली की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है। जो आठ शक्तियाँ हैं ना, ये तो केवल गिनती में आठ है, लेकिन इनके अलावा और भी तो बहुत सारी शक्तियाँ, शांति की शक्ति, समेट परिवर्तन करने की शक्ति, मोड़ने की शक्ति, त्यागने की शक्ति, अपनाने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो ये हमारे पास हैं और इनके बल से हम कैसी भी आत्मा हो, उस आत्मा के मन को बदल सकते हैं, उसे झुका सकते हैं, उसकी आसुरी वृत्ति को भी खत्म कर सकते हैं। इतने हमारे पास ताकत है। ऐसा अनुभव आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा है। फिर जब सेवा के क्षेत्र में जाओगे ना, तब और भी बहुत ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि कोई व्यक्ति आया था चोरी करने और अपना ही दान में दे गया पैसा, हैं? ऐसे भी अनुभव आपको होंगे। लेकिन हम अपने स्वरूप में टिके हुए हों तब कोई आदमी झुकेगा, ऐसे नहीं झुकेगा। अगर अपन डर गए उसको देख करके, तो कहते हैं डरने वाले को अधिक डराया जाता है। मैं क्यों डरूं? डरता वो है जिसके मन में पाप हो। जब हम निष्पाप आत्मा ही है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जितनी जितनी प्योरिटी की शक्ति बढ़ेगी, उतनी उतनी ये निर्भयता आती जाएगी। हाँ, मर्यादाएं तो बाबा ने सिखाई हैं भाई, अकेले नहीं रहना, अकेले नहीं जाना, सादा जीवन रखना, ज्ञान 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 का मनन करना, माने ज्ञान के गहने सदा पहन के रखना, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ बात नहीं करना, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ किसी से कनेक्शन नहीं रखना, जहाँ जरूरत नहीं उसके साथ कोई संबंध, कोई मोबाइल, कोई फोन, कोई बातचीत क्यों रखें? क्योंकि कनेक्शन होगा। लाइट कैसे आती है? कनेक्शन से ही आती है। पानी कैसे आता है? नाली बनी होती है तो ही आता है। कोई व्यक्ति भी अगर किसी भी तरह का नुकसान करता है, कनेक्शन के थ्रू ही आता है। कनेक्शन ही कट रखेंगे तो भला किसी की हिम्मत ही कैसे होगी? और किस चीज का भय होता है? धन खत्म ना हो जाए, गरीब ना हो जाऊं, कहीं आवश्यकता पूर्ण ना हो, कहीं भूखा ना मरना पड़े, इस तरह की भी कईयों को चिंताएं हो जाती हैं। बाबा ने हम बच्चों की दाल रोटी की गारंटी ली हुई है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित किया। देखो ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ, पद्म गुणा हो गया, इसलिए बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा दो रोटी और दो धोती जरूर देगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया का कुछ भी हो, लेकिन हम बच्चों की बाबा ने जिम्मेवारी ले ली। और चाहिए भी क्या, दो रोटी दो धोती तो चाहिए, इसलिए उसका भी भय किस लिए? समर्पित हो जाऊं, नौकरी करूं तो अच्छा कमाऊं, अच्छा खाऊं, समर्पित हो जाऊं तो पता नहीं हेल्थ के अनुकूल मिले ना मिले, फल मिले ना मिले, सब्जी मिले ना मिले, मनपसंद घी दूध मक्खन मिले ना मिले, ये भी बढ़िया मनपसंद कपड़ा मिले ना मिले, ये भी भय होता है। समर्पित हो जाऊं, मनपसंद खरीदने दें ना खरीदने दें, कई तरह के भय होते हैं। लेकिन हमारे मन की पसंद अच्छी है कहाँ? मन की पसंद का आज तक पहना तो क्या बने, स्वर्ग की परी बने क्या? क्या बन गए मन की पसंद पहनते पहनते? नरक की परियां बने। देखो दुनिया में लोग मन पसंद पहनते, तो कम से कम एक जन्म तो प्रभु पसंद पहनूं। लड़कियां जब शादी कर लेती हैं तो ससुराल में कपड़ा पहनती हैं तो पूछती हैं, मालूम है इस बात का? आजकल पता नहीं है कि नहीं, आजकल ज्वाइंट फैमिलीज नहीं है, सास को पूछती हैं आज कौन सा कपड़ा पहनना है, ननद को पूछती हैं आज कौन सा कपड़ा पहनना, पति को भी पूछती हैं आज कौन सा कपड़ा पहनना, अपनी मर्जी से नहीं पहनती। क्योंकि अब हम इनके घर में आ गए तो ये जो पहनाएंगे, कई साड़ियाँ होंगी ना, वो बोलेंगे जी आज फलानी जगह जाना है, आज ये अनुकूल है, आज ये अनुकूल है, आज ये अनुकूल है, उनको मालूम नहीं रहता ना, पूछती। बड़े भी सोचते हैं भाई हमको रिगार्ड दिया, तो जब हम बाबा के बन गए तो हमको क्या करना चाहिए। एक लौकिक रीति में भी ये रिवाज है कि वो अपनी मनपसंद छोड़ के दूसरों को खुश करना चाहती है। तो जब हम बाबा के बन गए तो जो बाबा पहनाए, जो बाबा खिलाए, जहाँ बाबा बिठाए, जो बाबा सेवा करवाए, अच्छा है ना, अपना मन हल्का रहता है। नहीं तो अपने मन को डिसीजन लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये भी डर नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना किसी को। और किस बात की चिंता होती है? परिस्थितियों का भय होता है, स्वभाव संस्कार की बातें आती हैं, और बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, किसी से एडजस्टमेंट नहीं हुई तो, किसी ने सहयोग नहीं दिया तो, मैं नहीं चल सकी तो, ये तो अंत तक बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा मन नहीं लगा तो, मौसम सूट नहीं हुआ तो, अनुकूल सेवा नहीं मिली तो, अनुकूल साथी नहीं मिला तो, घर नहीं जाने देंगे तो, ये तो वाले बहुत सारे प्रश्न रहते, इनका भी घूमते घूमते आते हैं मन में, हैं इनको कहते हैं तो अंतक प्रश्न, तो अंत वाले प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का यूं तो समाधान है एक बाबा में अटूट निश्चय, सारे तो को खत्म करने वाला बाबा है। लेकिन मान लीजिए परिस्थितियां आती भी हैं, तो परिस्थितियां आदमी को कुछ ना कुछ दे के जाती, अनुभवी बना के जाती। देखो देवताओं के आगे परिस्थितियां नहीं है तो उनकी गिरती कला हो जाती है, 16 कला से थोड़े दिन के बाद 15 कला, फिर 14 कला। हम बच्चों के सामने परिस्थितियां हैं तो हमारी चढ़ती कला है। और बाबा कहता है जिसके आगे जितनी परिस्थितियां आती हैं वो उतना ही आगे जाएगा। जैसे फोटोग्राफर होते हैं ना, वो जितनी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे उनकी उतनी ज़्यादा आमदनी होती है। तो हम बच्चे भी जितनी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाएंगे उतनी हमारी आमदनी अधिक होगी। सेवा में परिस्थितियां आएंगी, भाव स्वभाव की आएगी, कोई प्रश्न पूछेगा, कोई जिज्ञासु नाराज होगा, गर्मी सर्दी की आएगी, अकेलेपन की आएगी, बहुत कुछ होता है। लेकिन उनको पार करके जब सफलता मिलती है तब बहुत खुशी मिलती है। इसलिए परिस्थितियों को पार करना ही सफलता है, परिस्थितियों के आगे हार जाना ही असफलता है। जैसे हम कहते हैं महाराणा प्रताप विजयी थे, अब वास्तव में तो उन्होंने मुस्लिम राज्य को भारत से बाहर खदेड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनको विजयी क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। तो जो व्यक्ति जीते या हारे लेकिन परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके उसको विजयी माना जाता है। परिस्थिति के एंड में पार हो जाने के बाद आपके लिए बहुत सुंदर तोहफा होता है, हर तूफान एक तोहफा देके जाता है। तो भला परिस्थितियों से भी क्यों डरे? एक बार मैं एक पाठशाला में क्लास कराने गई, तो क्लास के बाद हम तुरंत वापस आ जाते थे क्योंकि बस एक ही होती थी, वो मिलती थी। उस दिन पता नहीं कई माताएं थी, बहन जी ए बता दो, इधर चल पड़ो, हमारे घर चल पड़ो, ऐसे करते करते उन्होंने मेरी बस निकलवा दी। भावना वाली होती है ना माताएं। बस निकल गई तो मुझे कहा इस बस में बैठ जाओ, ये आधे रास्ते तक जाएगी और इसके बाद दूसरी पकड़ना, वो आगे तक पहुंचाएगी। पहले बदली नहीं करनी थी, बाद में बदली करनी पड़ी। तो जब एक बस से उतरे ना, तो शाम के जैसे 7 बज गए, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जल्दी होता है, और जी जोर का तूफान आ गया। तूफान इतना जोर से आया कि आदमी को आदमी दिखना बंद हो गया, और जितनी वहां पे दुकानें थी ना, सबने शटर गिरा लिए और सब भाग गए। अब वहां अकेली मैं थी और 5-6 लोग और थे, वो भी शायद मेरी तरह बेचारे उतर गए होंगे वहां। सब बसें आनी जानी बंद हो गई। तूफान जब दिखता है ना, तो जो बस का अड्डा होता है वहीं से बंद कर देते हैं, चलाना ही बंद कर दे, जब दिखता ही नहीं है लाइट के बाद भी। अब क्या करें भाई, बताओ क्या करें। हैं एक बाबा ही है ना, बाबा बाबा करते रहो, बाबा 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 तूफान बंद कर, बाबा तूफान बंद कर, क्या करेंगे, है ना। लेकिन बाबा रास्ता निकालता है, निर्भय अगर आप रहेंगे आपका रास्ता निकलेगा। तो एक ट्रक आया, उन लोगों ने, 5-6 जो लोग खड़े थे ना, दौड़ लगाई, भाई ट्रक रुकेगा हम बैठेंगे। वो एक बार तो रुक गया, फिर वो नज़दीक पहुंचे तो वो भी भाग गया, वो बेचारे फिर वापस आ गए। मैं, मेरी तो भागने की थी ही नहीं। उसके बाद दूसरी ट्रक आई, वो फिर भागे, इस बार ट्रक वाला रुक गया और उन्होंने मुझे भी आवाज़ लगाई कि बहन जी जल्दी आ जाओ। मैं भी दौड़ी। अब जो ट्रक का पीछे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ऊंचा होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है पर चलो जैसे तैसे चढ़ गए। अब वो ट्रक वाला इतनी तेज चला रहा था कि उसमें खड़े होने की थोड़ी जगह होती है पीछे, वो डंडा होता है ना, बस उसको पकड़ के खड़े रहो। सर्दी के दिन शाम को तो वैसे ही ठंडी शुरू हो जाती है, तो थोड़ी देर पकड़ो वो डंडा भी ठंडा, हाथ लाल हो जाए, छूट जाए। तो वो भाई भाई थे, मैं अकेली थी, तो इसलिए वो भी डर लगे, भई ये पकड़ के रखना है, छूटना नहीं चाहिए। और लंबा था, घंटे भर का रास्ता बाकी था। तो मैंने मन में सोचा बहुत बढ़िया मौका है, इन सबको ज्ञान सुनाना चाहिए। तो मैंने उनको आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान देना शुरू कर दिया। वहाँ तो कोई काम नहीं था ना, ज्ञान सुनाती रही मैं, घंटा भर पूरा हो गया। शहर में प्रवेश हुए तो शहर की सारी लाइट गई हुई थी, ये नहीं पता आश्रम किधर है, क्योंकि मैं तो मधुबन से गई थी और शहर का मुझे मालूम नहीं था। पुरानी बात हो गई, 10-12 साल की मैं यहाँ आई थी, तो बहन जी ने एक पाठशाला में मुझे भेज दिया। तो शहर की मुझे ये नहीं पता, पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है। तो एक भाई उसी शहर का था, वो उतरा, उसने कहा बहन जी मेरे घर के पास आश्रम आ जाओ। तो जी हम अंधेरे में ऐसे चले, तो मुझे रास्ते में कहता है बहन जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना कोई बच्चा नहीं है, कोई आशीर्वाद दे दो ना। तो जी मेरे डब्बे में एक लड्डू पड़ा था क्योंकि मैं टोली बांट के आई थी, एक लड्डू बचा हुआ था। मैंने कहा इस बेचारे ने मुझे रास्ता दिखाया है, मैं इसका दिल क्यों खराब करूं। तो मैंने उसको वो लड्डू निकाल के दे दिया मैंने कहा ये आशीर्वाद है। फिर वो मुझे आश्रम में बहन जी के हाथ में, बहन जी आपकी बहन जी को ले आया हूँ। बहन जी बेचारी बहुत चिंता कर रही थी, उसने मेरे पाँव छुए और वो चला गया। बहन जी को भी थोड़ी सांस आई। अच्छा देखो एक परिस्थिति आई है ना, सेवा में जाएंगे तो बहुत कुछ होगा, बस निकल जाएगी। लेकिन दो फायदे हुए, एक फायदा तो ये हुआ कि जो ट्रक में लोग खड़े थे उनको बाबा का परिचय मिला है, और दूसरा फायदा क्या हुआ कि कम से कम इस भाई का पुण्य का खाता तो जमा हुआ। बाबा के घर तक आया, मुझे छोड़ के गया, बहन जी ने भी उसको दुआ दी, भाई अच्छा भाई है, मैंने भी दिल से उसको दुआ दी, है ना। तो सेवा ही हुई, नुकसान क्या हुआ, और अपन अनुभवी बन गए, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तो परिस्थितियां आती हैं, भूख की परिस्थिति आएगी, थोड़ा भाव स्वभाव की आएगी, किसी के कोई कहा सुनी हो जाएगी, बहसबाजी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, सेवा में देरी हो जाएगी, है ना, कोई चीज गुम जाएगी, चलो छोटी मोटी बातें आती हैं। लेकिन हर बात का एक कल्याणकारी पहलू जरूर होता है। इसलिए जो होता है हमारे कल्याण के लिए होता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग कल्याणकारी हैं, मैं कल्याणकारी हूँ और आप बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए आपका कल्याण हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति में स्वमान होता है वो डरता नहीं है। स्वमान वाला सामने वाले को डरा देता है, खुद नहीं डरता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा स्वमान में रहो। कोई भी स्वमान हमारा, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, कोई भी स्वमान हर घड़ी मन बुद्धि में घूमते रहना चाहिए, मन खाली नहीं रहना चाहिए। भक्ति में लोग कहते हैं राम राम करो, राम राम करो, वो नहीं, स्वमान बुद्धि में घूमना चाहिए। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरी सफलता हुई पड़ी है, मैं सबका भला सोचने वाली हूँ, शुभ चिंतक हूँ, कल्याणकारी हूँ, मैं रहम दिल हूँ, मैं जगत माता हूँ, मैं सबकी शुभ चिंतक हूँ। कोई भी स्वमान, देखो कई दुनिया में अज्ञानी लोग जिनको हमारी तरह ज्ञान नहीं होता वो भी अपने स्वमान में रहते हैं और स्वमान से उनकी भी जीत होती है। आपने राजा अशोक की कहानी सुनी होगी। राजा अशोक ने जब कलिंग पर चढ़ाई की तो कलिंग का जो राजा था वो या राजा का कोई और सहयोगी रहा होगा, छिप करके राजा अशोक के पाटलिपुत्र में ही आके छिप गया और राजा अशोक मारने के लिए उनको ढूंढ रहा था। तो वो एक पूरी फैमिली थी, राजा रानी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। तो जिनके यहाँ वो छिपके ठहरे थे ना उन पे कर्ज था और राजा अशोक ने घोषणा की थी कि जो उनको ढूंढ के लाएगा उसको 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी। तो इन्होंने उस आदमी को कहा तू हमें पकड़वा दे राजा अशोक को, तेरे को 1000 मोहरे मिल जाएंगी, तेरा कर्ज उतर जाएगा, हम तो पकड़े ही जाएंगे आज नहीं तो कल। तो उस आदमी ने बहुत मना किया, ये इतिहास की एक सच्ची घटना है। लेकिन आखिरकार उसने इनको जैसे राजा को सौंप दिया। तो कहती हैं राजा तलवार लेकर के ना दरबार में वो बैठे थे और उनके नज़दीक गया और जाके कहता है मैं अभी अभी तुम चारों की गर्दन धड़ से अलग कर देता हूँ। तो जो राजकुमारी थी ना वो मुस्कुराती रही। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आयु में तो सबसे छोटी है और देखो तलवार को देख के भी मुस्कुरा रही है, कमाल की बात। तो उसको पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो, तुमको डर नहीं लग रहा मृत्यु से? तो उसने कहा महाराज मैं इसलिए हंस रही हूं कि गर्दन उड़ाने का काम तो एक जल्लाद और एक कसाई भी कर सकता है, आप राजा होके बस यही सीखे, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं आता। तो राजा अशोक की जैसे तलवार हाथ से छूट गई। देखो कितनी बड़ी बात उसने बड़े सहज ढंग से कह दी। राजा का राजाईपना जाग गया। पहले तो उसमें क्रूरता और क्रोध भरा था ना भाई, जिसमें क्रोध और क्रूरता हो उसको आप क्या कहेंगे, कसाई तो कहेंगे, जल्लादी तो कहेंगे ना। राजा तो पालनहार होता है, राजा तो सबका रक्षक होता है। तो उसका उसके स्वमान ने इसका भी स्वमान जगा दिया और राजा ने उनको माफ कर दिया। तो हम अपने स्वमान से दूसरे के भी स्वमान को जगा सकते हैं, उसकी क्रूरता को खत्म कर सकते हैं, कोई भी विकार हो उसको खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार दो मित्र नाव में जा रहे थे, तो आपने भी सुना होगा आंधी आई तो एक मित्र डरने लगा, दूसरा निश्चिंत बैठा था। तूफान आया सागर में तो उसने कहा तेरे को डर नहीं लगता? तो एक दूसरे मित्र ने तलवार निकाली और उसके गर्दन पे रख दी, फिर भी वो मुस्कुराता रहा। तो पूछा तेरे को डर नहीं लगता गर्दन पे तलवार रखी है? उसने कहा तू मेरा मित्र है, मुझे तेरे पे अटूट निश्चय है, तू मजाक कर रहा है, तू मेरी गर्दन थोड़े काटेगा। उसने कहा देखो इस तूफान को देख करके भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है खुदा मेरा मित्र है, वो मजाक कर रहा है, वो हमारा नुकसान थोड़े पहुंचाएगा, तेरे को मेरे पे जितना निश्चय है मुझे इससे कई गुना खुदा पे निश्चय है, वो मेरा अहित नहीं होने देगा। तो स्वमान की स्मृति, परमात्मा पे अटूट निश्चय, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमको विजयी बनाएगा। बाबा कहता है ना, आप रूहानी सेनानी हो, वो भी सेना होती है, तो उस सेना के भी जो महावीर सिपाही होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तो होते हैं भाई साधारण, ठीक है तनख्वाह मिल रही है और लाइन में लग जाओ तुम भी, लेकिन कई होते हैं जिनमें देशभक्ति का जज्बा होता है। कितनी ऊंचाई है, 1300 फीट की ऊंचाई है और बर्फ ही बर्फ है, ठंडी हवा चल रही है, बदन को चीर रही है, फिर भी तिरंगा लेके चढ़ जाएंगे, रास्ते में लोग रोकेंगे, मारेंगे, गोली सामने से आ रही है, कहेंगे नहीं हमको वहां तिरंगा लहराना ही है। ऐसे वीर सेनानी होते हैं, फिर उन लोगों की विजय के बाद उनको मेडल मिलता है, जीते जी मिलता है या मृत्यु के बाद मिलता है, हैं? तो बाबा हमको भी कहता है आप रूहानी मिलिट्री हो, आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम भी इस रावण की नगरी पर शिव बाबा का झंडा लहरा के दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए लोग हमें रोकेंगे डराएंगे, लेकिन जब तक ये रावण की नगरी खत्म नहीं हो जाती, शिव बाबा का ध्वज नहीं लहराता, जब तक बाबा की जय जयकार नहीं हो जाती, तब तक हम भी आराम से नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। ये अंदर अग्नि होती है, लगन की अगन जिसको कहते हैं, ये भीतर होती है, जिसके भीतर ये अग्नि प्रज्वलित होती है, मुझे करना ही है करना ही है, वो ना डरता है और ना रुकता है, वो सफलता प्राप्त करके रहता है। तो आपको ये स्वमान याद है, आप कौन है, रूहानी सेनानी है ना, रूहानी मिलिट्री के बहुत योग्य सिपाही हैं। जैसे अंगद रावण के दरबार में गया तो पांव जमा के बैठ गया, डरा थोड़े था, तो हम बच्चों ने भी अपना अंग अंग भगवान को दे दिया, तो हम रावण से क्यों डरी। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब रावण वाली हैं, इसलिए हमको रावण की किसी शक्ति से, किसी बुराई से डरना नहीं है। हम बाबा के बच्चे विजयी थे, विजयी हैं, रहेंगे। ओम शांति।
परम पिता शिव के, शिव शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
मीनाक्षी, वो ज्ञान ने
पे शिव शक्तियाँ आ गई।